नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये विषय जुड़ा है पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक अहम उद्बोधन से, त्रिपदा गायत्री के तीन चरण। पूज्य गुरुदेव ने, जैसा कि हम जानते हैं, अपने जीवन के 70 साल सिर्फ गायत्री मंत्र के अनुसंधान में लगाए। उनका कहना था कि ये जो 24 अक्षरों का मंत्र है ना, ये भारतीय तत्वज्ञान और विज्ञान का बीज है, उसका सार है। तो आज हम कोशिश करेंगे पूज्य गुरुदेव के इस गहन अनुभव और शोध के निचोड़ को समझने की। आखिर ये गायत्री के तीन चरण जिनकी बात उन्होंने की, वो हैं क्या? चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पूज्य गुरुदेव गायत्री को त्रिपदा कहते थे, मतलब तीन पैरों या चरणों वाली, और उन्होंने इसके दो मुख्य पहलू बताए। एक है विज्ञान पक्ष, जिससे शक्ति उत्पन्न होने की बात कही गई, और दूसरा है ज्ञान पक्ष, जो जीवन को एक दिशा देता है। तो पहले ये विज्ञान पक्ष को समझते हैं, इसमें क्या शामिल है?
हो गया, मतलब आत्मानुशासन, साधना यानी आध्यात्मिक अभ्यास, योगाभ्यास, जप, ध्यान, ये सब। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने अपने अनुभव से ये साफ किया कि इन क्रियाओं से शक्ति तो बनती है, पर उनकी सफलता, मतलब मंत्र का असली फल मिलना, वो सिर्फ विधि विधान कर लेने से नहीं होता।
नहीं, इसके लिए तीन बुनियादी शर्तें हैं, बहुत जरूरी।
जैसे?
जैसे बीज बोना एक बात है, पर फसल के लिए अच्छी जमीन, खाद, पानी सब चाहिए ना। बस वैसे ही उपासना की सफलता के लिए भी ये तीन तत्व अनिवार्य है।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो ये तीन शर्तें कौन सी हैं जो उपासना को, खासकर गायत्री उपासना को, सफल बनाती हैं? देखिए, पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है अटूट श्रद्धा। पूज्य गुरुदेव तो श्रद्धा को सिर्फ भावना नहीं मानते थे, वो कहते थे ये अपने आप में एक शक्ति है, प्रचंड शक्ति। जैसे बिजली में, भाप में शक्ति होती है, वैसे ही श्रद्धा में है। अगर गहरा विश्वास नहीं है तो फिर कितना भी जप कर लें या कर्मकांड करें, वो बस एक बाहरी क्रिया रह जाती है, खोखली। उसका वो आंतरिक प्रभाव नहीं हो पाता।
अच्छा, श्रद्धा। और दूसरी शर्त?
दूसरी शर्त है परिष्कृत व्यक्तित्व। इसका मतलब है कि जो साधना कर रहा है उसका चरित्र अच्छा हो, वो सदाचारी हो, संयमी हो, और हाँ, लोक कल्याण की भावना रखता हो, परोपकारी हो। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि अध्यात्म के ऊंचे लाभ उन्हीं को मिलते हैं जो जप तप तो करते ही हैं, पर साथ साथ अपने जीवन को, अपने आचरण को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। व्यक्तित्व का परिष्कार बहुत जरूरी है।
यानी सिर्फ मंत्र जपना काफी नहीं, व्यक्ति का आचरण भी मायने रखता है। और तीसरी शर्त?
जी, तीसरी शर्त है उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, या कह लें उद्देश्य। अगर उपासना सिर्फ छोटी मोटी स्वार्थी इच्छाओं के लिए की जा रही है, मतलब बिल्कुल निजी फायदे के लिए, तो फिर दैवीय सहायता की उम्मीद करना बेकार है। देवता भी, वो कहते थे, ये देखते हैं कि उनकी शक्ति का उपयोग किस काम के लिए मांगा जा रहा है। अगर उद्देश्य ऊंचा है, जैसे मानवता की सेवा, समाज का भला, राष्ट्र का उत्थान, तो ऐसी प्रार्थना जरूर सफल होती है। भगीरथ का उदाहरण उन्होंने दिया, उनकी नियत कितनी ऊंची थी, तभी तो माँ गंगा पृथ्वी पर आई, शंकर जी ने मदद की।
हाँ बिल्कुल, ये तो हुई विज्ञान पक्ष की तीन शर्तें, श्रद्धा, व्यक्तित्व और उद्देश्य। ये समझ में आया। अब ज्ञान पक्ष की बात करते हैं, इससे जीवन जीने के लिए क्या महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं?
हाँ, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान पक्ष से, गायत्री के तीन चरणों से तीन मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं, और पूज्य गुरुदेव ने धर्म और अध्यात्म का सार मानते थे। पहली है आस्तिकता, मतलब ईश्वर के होने में पक्का विश्वास। ये समझना कि ईश्वर सब जगह है, वो न्याय करता है और कर्मों का फल जरूर देता है, देर सवेर पर मिलता जरूर है। जब ये विश्वास पक्का होता है ना, तो आदमी गलत काम करने से डरता है, बचता है, और वो कोशिश करता है कि ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में उतारे। वो अपनी इच्छा ईश्वर पर थोपने के बजाय ईश्वर की इच्छा में रहना सीखता है।
आस्थिकता, ईश्वर में विश्वास। और दूसरी शिक्षा?
दूसरी है आध्यात्मिकता। इसे हम आत्मबोध या स्वावलंबन भी कह सकते हैं, मतलब खुद को जानना, खुद को समझना। ये मानना कि हमारी जो बाहरी परिस्थितियां हैं, सुख दुख हैं, वो काफी हद तक हमारी अपनी सोच, हमारी मनास्थिति का नतीजा है। स्वर्ग नर कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं, वो हमारे अंदर ही है। तो ध्यान किस पर देना है? खुद को सुधारने पर, अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करने पर। क्योंकि कहा भी गया है ना, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं।
सही बात है। आत्मसुधार
और तीसरी शिक्षा। तो तीसरी है धार्मिकता। अब यहाँ धार्मिकता का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, इसका मतलब है कर्तव्य परायणता, अपने कर्तव्यों को निभाना। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि इंसान और पशु में यही तो बड़ा फर्क है कि इंसान पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ नैतिक बंधन हैं। कौन से कर्तव्य? अपने शरीर को स्वस्थ रखना, मन को पवित्र रखना, परिवार के प्रति जिम्मेदारियां निभाना, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करना। इन सभी कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना ही सच्ची धार्मिकता है।
तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि गायत्री मंत्र की जो इतनी शक्ति बताई गई है, जिसे कामधेनु या कल्पवृक्ष तक कहा गया है, वो शक्ति असल में तभी पूरी तरह मिलती है जब ये दोनों पक्ष मिल जाए, यानी विज्ञान पक्ष की वो तीन शर्तें, श्रद्धा, व्यक्तित्व, उद्देश्य, और ज्ञान पक्ष की ये तीन शिक्षाएं, आस्तिकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, ये सब साधक के जीवन में एक साथ हों।
हाँ बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। यही पूज्य गुरुदेव का निष्कर्ष है, 70 साल के अनुभव का निचोड़। वो कहते थे कि केवल मंत्र जपना तो ऐसा है जैसे बीज बो दिया, पर फसल कब मिलेगी? जब श्रद्धा की उपजाऊ भूमि हो, परिष्कृत व्यक्तित्व की खाद डाली जाए और ऊंचे उद्देश्य का पानी दिया जाए, और साथ ही आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का जो ज्ञान है वो जीवन में उतरे, धारण किया जाए। उन्होंने गाय का उदाहरण दिया। गाय दूध देती है, ये सच है, पर क्या बिना चारा पानी दिए, बिना सेवा किए देगी? नहीं। तो मंत्र एक चाबी की तरह है, पर ताला खोलने के लिए चरित्र का, श्रद्धा का, ऊंचे लक्ष्य का हाथ चाहिए, और जीवन में ईश्वर, आत्मा और कर्तव्य का ज्ञान भी साथ में हो। तो पूज्य गुरुदेव का 70 वर्षों का जो गहन शोध और अनुभव है, वो यही कहता है कि गायत्री मंत्र की शक्ति बिल्कुल वास्तविक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये पारस जैसी है, अमृत जैसी है, फल दे सकती है, लेकिन ये बिना शर्त नहीं है, कंडीशनल है। इसकी पूरी सफलता तभी मिलेगी जब विज्ञान और ज्ञान दोनों पक्षों का मेल हो। साधना उपासना के साथ साथ श्रद्धा, श्रेष्ठ चरित्र और महान उद्देश्य चाहिए, और ज्ञान के साथ साथ आस्तिकता, आत्मसुधार और कर्तव्य पालन जीवन में उतरना चाहिए, तभी वो पूर्ण लाभ मिलता है।
ये तो वाकई बहुत गहरी बात है और सोचने पर मजबूर करती है। गायत्री की शक्ति को पाने की ये जो शर्तें और अपेक्षाएं हैं, ये काफी ऊंची हैं। तो यहाँ मन में एक सवाल उठता है, जो शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आ रहा हो, कि आज के समय में अगर कोई व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना शुरू करना चाहे, तो वो अपने जीवन में इनमें से किसी एक पहलू को बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो अपने चरित्र का सुधार हो या अपने जीवन के उद्देश्य को थोड़ा और साफ करना हो, वो पहला छोटा सा कदम क्या उठा सकता है?